नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका कहानी दिल से दिल तक में। और आज की मेरी जो कहानी है उसका नाम है एक दिल हजार अफसाने। कहानी का नाम काफी इंटरेस्टिंग है ना, कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी के लेखक हैं अमृतलाल नागर। ये एक प्रतिभाशाली कथा साहित्यकार थे। वैसे तो इन्होंने कहानियां, बाल साहित्य, हास्य व्यंग, उपन्यास और नाटकों का लेखन किया था, लेकिन ज्यादातर इन्होंने उपन्यास ही लिखे हैं जो सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक जीवन पर आधारित थे। चलिए आइए कहानी सुनते हैं। कोल्हापुर के शालिनी सिनेटोन में ऊपर बने हुए एक ईटिया टीन के छप्पर पड़े कमरों की कतार में एक कमरा मेरा भी था। वही मेरा घर पर दफ्तर था। टाट के छीने पार्टीशन के दूसरी तरफ पब्लिसिटी वाले कमरे में मौलाना रहते थे। वो इंदौर के रहने वाले और अपने प्रदेश के मशहूर कांग्रेसी लीडर थे। उस वक्त व्यक्तिगत सत्याग्रह के अपराध में जेल भुगतकर हाल ही में छूटे थे। देश सेवा ने बीवी बच्चों को बेगाना बना रखा था। अब उन्हीं से अपनापन निभाने के लिए काम की तलाश में भटकते भटकते बंबई और बंबई से कोल्हापुर आ गए थे। मैं भी एक फिल्म के संवाद लिखने के लिए बंबई से गया था। अनजानों के बीच हम अपने होकर मिले। जबान, वजादारी, तकल्लुफ को मौलाना अपने पुरखों की अमानत के तौर पर सहेज कर रखते थे और करीने से बरतते थे। गदर में उजड़कर तितर बितर हुए अवध के घरानों में से एक उनका भी था। शालिनी सिनेटोन के उस टाट के पार्टीशन लगे एक ईटिया कमरे में मेरे लिए लखनऊ आबाद हो गया। घनघोर बरसात की रातों में जब कंपनी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की छत छलनी बन जाती, तब मौलाना का रैन बसेरा भी उजड़ जाता था। वो मेरे ही कमरे में मेज का दफ्तर अलमारी में पहुंचाकर उसी पर अपना पिस्तर जमाते थे। पानदान की कसम, हमने बड़े अच्छे दिन बिताए हैं। इमारत के नीचे सांपों से और इमारत के अंदर गणपति नाम के लाल रंग के बिस खोपड़ों से, जिन्हें मारना वहां वाले बुरा समझते हैं, घिरे हुए हैं। टीन की छत पर मूसलाधार बारिश का धौसा बज रहा है। हवा बड़े जोम के साथ कंपनी के सुतारखाने के बने हुए लिफाफिया दरवाजों से जोर आजमाइश करने के लिए बार बार छपटती है और कब्जे कुंडी से मजबूर दरवाजे चर्रमर्र की आवाज के साथ खड़खड़ा कर रह जाते हैं। लेकिन हम इन सब के आदि हो चुके थे। उस खड़खड़ धड़धड़ में नींद तो आती नहीं थी। अक्सर ऐसी रातें हम बातों में गुजार देते थे। कह ही चुका हूं कि मौलाना बड़े शरीफ देवता आदमी थे, लेकिन मैं कोल्हापुर के रियासती माहौल में कभी कभी गरीबुल वतनी की हाय से तड़प कर छांव पाने के लिए जान पहचान की एकाध जगह में शहर भी चला जाया करता था। लौटते में कभी देर हो जाया करती थी। तांगे वाले खास तौर पर चौमासे की रात में एकाएक शालिनी सिनेटोन जाने के लिए राजी ना होते थे। वो इलाका आबादी से दूर और सांपों की पैदावार के लिहाज से बड़ा उपजाऊ था। भय में भूत तो जुड़ ही जाते हैं, अक्सर पैदल ही लौटना पड़ता था। शालिनी पैलेस और झील किनारे की रोशनी भरी जिंदगी के बाद जब एक हाथ में टॉर्च और एक में छड़ी लिए मैं मौत लोक में कदम रखता तो मौलाना की याद आती। वो कितनी सादी और सधी हुई जिंदगी बिताते हैं और मैं गुनाह से दबे हुए लेकिन आदत से मजबूर शराबी की तरह रात के 11:30 बजे जब दोनों तरफ घने पेड़ों से छाई हुई अंधेरी सड़क से गुजरता तो वो डग डग पर दिखाई पड़ने वाले सांपों और ना दिखाई पड़ने वाले भूतों के अलावा मेरी लाख लाख सूझती अंधी तौबाओं से भर जाती थी। सड़क के दोनों तरफ नीचे फैले हुए झाड़ झंकारों से तरह तरह की सीटियां सुनाई पड़ती थी। तेज और दम साध कर बजने वाली सीटियां, मध्यम भनभनाहट से गूंजती हुई सीटियां, पुक पुक की डबल गंज उठाकर कानों में खोलते तेलों सी टपकने वाली आवाजें, झिल्ली झींगरों की लंबी मनहूस झंकार, मेंढक की टर टर और बीच बीच में ऊपर से घुघुओं और उल्लुओं का कर्कश स्वर सांस को सलाह की तरह खड़ा कर देता था। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ सांपों का ही डर बना रहता था। सघन पेड़ सड़क को साइबान की तरह ढके रहते थे, जिसमें चौमासे की बादलों घिरी रात का अंधेरा और भी गहरा होकर सूनी सड़क पर छाता था। पेड़ों की नीची डाली से लिपटकर झूलते हुए सांप भी अक्सर दिखाई पड़ जाते थे। जरा औचक से भी उनके नीचे होकर कोई गुजर जाए तो सीधे ब्रह्मांड में ही विष के दांत गड़े। अक्सर टॉर्च की रोशनी में खुश्की की लहरों जैसे बल खाते हुए खौफनाक कीड़े चमक जाते थे। मैं अपने भाग सराहता की जान बची। एक बार टॉर्च जलाते ही चार पांच कदम बाएं पर एक बड़ा नाग अपनी कीचुल छोड़ता हुआ दिखाई पड़ा। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उसने तड़प कर फन उठाया। उसकी आंखों की चमक मेरी नजरों को बांध गई। फिर न जाने कौन सी बुद्धि समाई कि मैं टॉर्च बुझाकर वहीं का वहीं खड़ा हो गया। बत्ती बुझा देने से अंधेरे में और भी तबीयत उलझती थी। कहीं पैरों के पास ही ना आ गया हो। ना रहा गया टॉर्च जलाई। नागराज जा चुके थे। उनकी 2.5-3 फुट लंबी केचुल सामने पड़ी हुई थी। सारे डर के बावजूद उसे उठा लेने को जी चाहा। जल्दी से रुमाल निकाला, छड़ी के सहारे केचुल उठाकर रखी और उसकी पोटली बांधकर ले चला। चलते चलते रास्ते में ख्याल कहां का कहां ले गया। मैं सोचने लगा, रुमाल में सांप की कीचड़ की बजाय फूलों के गहरे हैं, जिन्हें लेकर मैं आपसदारों की निगाहों से छिपता कतराता पिछवाड़े की गलियों से चाहत की मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। मुझे हंसी आ गई। आकर देखा, मौलाना मेरे ही कमरे में मेज पर आसन जमाए बैठे हैं। मुझे देखते ही बोले, आ गए पंडित जी, कसम खुदा की जो आज के बाद फिर कभी देर से लौटे तो अनशन करूंगा मैं, आप यो नहीं मानेंगे। मैंने हंसकर कहा, आपके लिए तजुर्बे की सौगात लाया हूं मौलाना। मैंने रुमाल खोलकर उनके सामने रख दिया। किस्सा सुनकर बोले, मानता हूं कि आप लखनऊ के हैं, बातों बातों में लखनऊ की रंगीनी किस्सा गोई का फन बन गई है। रोमान की तवारीख के वर्क उलटते हुए मौलाना ने एक किस्सा उठा लिया, फरमाने लगे, मेरे एक अजीज थे और बड़े दोस्त भी, जमींदारी उनकी सीतापुर में थी, मगर रहना सहना ज्यादातर लखनऊ में ही होता था। आप तो खैर शौक के फूल ही चुनते हैं, मगर वो इश्क के बाग के माली थे। उन्होंने घर फूंक कर तमाशा देखा, दर्द जिगर से ही तड़पते रहे। एक बार का किस्सा बतलाते थे कि उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई, नाम था शबनम। उसमें कुछ बात थी जो इनके दिल में घर कर गई। बहुत से रिश्ते बने और बिगड़ गए, मगर शबनम गले का हार बन गई। वाली उम्र, बड़ी बड़ी आंखों में बाजार की शोखी और घर की लाज का संगम लहराता था, जिसे कभी पार ना कर पाए। पुतलियों की भावर में सदा के लिए डूब गए। शबनम नखास की गलियों में किसी खस्तादम कोठी के बचे कुचे हिस्से में बदरिया ढके पूनों के चांद सी रहती थी। जिसने देखा वही उस गली का होकर रह गया। माँ अपने शबाब के दिनों में कहीं पान की दुकान चलाती थी। एक नवाब की नजरें इनायत हो गई, खानगी बनकर लखनऊ चली आई। जब तक नवाब रहे दौरा दौरा रहा। उसके बाद घर वालों ने उसको और शबनम को सब कुछ छीन कर रोटी कपड़ों से भी मोहताज कर घर से निकाल दिया। रियासत और इज्जत के साथ जिंदगी बसर करने की आदत ने उन्हें बाजार में कोठा लेने से तो रोक दिया, मगर पेशा करने पर मजबूर कर दिया। दलाल के सहारे खानगी का कारोबार चलने लगा। उम्र पाकर शबनम ने माँ को सहारा दिया, उनकी उम्मीदों के नए सपने बनने लगे, मगर मौत ने वे सपने पूरे न होने दिए। शबनम पड़ोस के मकान में बड़ी बी की सरपरस्ती में आकर बस गई। बुद्धन दलाल शौकीन और रईस जादों में घूम घूम कर उसके हाथ के कढ़े किए के गिलाफ, मेज पोश वगैरह बेचकर उसकी, उसके बड़े खानदान और ऐशो इशरत की कहानी के बड़े बड़े दीवाते बांधता। कहां तो ये हालात थी कि जिसको अपने हाथ से चुटकी उठाकर दे दी, उसका घर पल गया और आज वही ताजे गुलाब के फूल सी मासूम बच्ची अपना पेट पालने के लिए मेहनत मशक्कत करती है। मेरे अजीज से शबनम की मुलाकात तब हुई जब वो बड़ी बी के यहाँ रहने लगी थी। बड़ी बी की कमर और गर्दन से हम खाई हुई देह, जिसकी गोरी चमड़ी पर अनगिनत छुरियों से उनकी गई गुजरी जवानी की रूह झांकती, उस घर के टूटे फूटे कोठे दालानों में डाली से गिरे चमेली के फूल की तरह धीरे धीरे इधर उधर डोलती हुई बड़ी भली मालूम होती थी। हर किसी के दिल में उनको देखकर इज्जत पैदा होती थी। ताजा बुझी हुई शमा के गुल में मंदी चमक के माने बड़ी बी की कांपती हुई आवाज का हर पर्दा एक पर्दा नशीन दर्द की झलक बनकर सुनने वालों के कानों में समाता। बड़ी बी अक्सर शबनम से कहा करती, जिंदगी बखेर बेटा, लेना खूब खेलना, मगर देखना कि खेलते खेलते गम के पहलू में किसी के दिल का चैन न खो जाए। खुदा ना करे किसी की रातें नींद की दुश्मन बन जाए। जज्बात की सफेद चादर पर पांव पोंछ कर पांव रखना बिटिया, कहीं दाग ना लग जाए। तब कोई उनकी माड़े से धुंधली पुतलियों को गौर से देखता, तपती हुई बालू पर तड़पती हुई मछलियां जिन पर आंसू भी नहीं पिघलते, हर बार खिजा बनकर बड़ी बी की झुर्रियां पड़ी धुंधली आंखों में समा गई थी। चेहरा बर्फ की तरह सर्द सफेद, तोड़ने पर बर्फ के अंदर से भी धुआं निकलता है, लेकिन बड़ी बी का नाता उससे भी टूट चुका था, हर तरह से टूट चुकी थी। जमाने की क्यारी के टूटे गुलाब के फूल सी मुरझा चुकी थी, जिसकी खुशबू अभी तक लखनऊ की मिट्टी में बसी हुई है। मौलाना रुके, मैंने पान पेश किए। दास्तान के नशे में हम दोनों ही झूम रहे थे। पल भर के लिए भी खुमार के तौर पर शालिनी सिनेटोन के उस टाट के पार्टीशन लगे एक ईटिया कमरे को महसूस करना मुझे अच्छा नहीं लगा। नानी दादी की कहानियां सुनते वक्त जैसे हुंकारे भरते हैं, मैंने भी कहा, हाँ मौलाना, फिर? मौलाना ने तकिए का सहारा लिया, पान की गिलौरी मुंह में एक दो बार इधर उधर फेर कर गाल में दबाई और कहने लगे, हाँ साहब, तो एक दिन की बात है, मेरे अजीज जब पहुंचे तो पता लगा कि शबनम पास पड़ोस वालियों के साथ शाहमीना की दरगाह पर चादर चढ़ाने गई हैं। वो उसका इंतजार करते हुए कुछ देर के लिए बड़ी बी के पास बैठ गए। नवाबी के रंगीन आलम से लेकर आज के खुदगर्ज जमाने तक उन्होंने बहुत कुछ देखा सुना था, कठिन आंचों में तपी थी जिंदगी के नए पुराने तजुर्बों का भंडार लुटाते हुए बड़ी बी एक दास्तान सुनाने लगी। उनकी कांपती हुई आवाज धीरे धीरे बयान कर चली। ईद का दिन था, बरस भर का त्योहार। शाही महलों में बेगमात से मिलने के लिए शहर के बड़े बड़े अमीरों उम्रा और अच्छे घरों की बहू बेटियां भारी भारी जोड़े पहनकर डोले पालकियों पर चढ़ी चली जा रही थी। महल के फाटक पर पालकियों का तांता बंधा हुआ था। एक खाली होती है, दूसरी आगे बढ़ती है। कोई अंदर से मिलकर लौटती है, उसकी पालकी के कहारों की पुकार पड़ रही है। चारों तरफ हटो बच्चों की धूम मची हुई है। दूर दूर तक डोले पालकियां महलों में जाने के इंतजार में खड़ी हैं। पीछे के कहार आगे वालों को हाँक मार रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। उसी तरफ से बादशाह के एक चचाजाद भाई गुजरे, घोड़े पर सवार चले जा रहे थे कि एकाएक नजरें अटक गईं। एक डोले के पर्दे से किसी गुलबदन की जरदोजी का काम की हुई लहरियोदार ओढ़नी का कोना बाहर लटक रहा था। ओढ़ने वाली कितनी अलहड़ होगी, सोचते ही नवाब का जी लहरा उठा। घोड़े से उतरे, डोले के नजदीक आए, ओढ़नी ऊंची उठा दी। डोले वाली ने बाहर किसी का हाथ महसूस किया तो पर्दे के नीचे से चार गोरी चिट्टी हिनाई उंगलियां सहम कर बाहर निकल पड़ी। ओढ़नी अंदर चली गई, साथ नवाब साहब का दिल भी। डोली वाली के लिए तो आई बात पार भी हो गई, मगर नवाब साहब शीतल पाटी ले पड़ गए। दिल में ऐसी जली कि ईद होली सी दहक उठी। उन चार नाजुक उंगलियों वाली का ना देखा हुआ फूला सा मुखड़ा रात के सितारों में तरह तरह से नक्श हो गया। अनजान ने जान ले ली, जिसने देखा मुंह से हाय निकली। महलों में कोहराम मच गया। नवाब साहब दिन ब दिन सूख कर काटा होते जा रहे थे। घर घर के लोग पूछते कि क्या हुआ, कुछ तो कहिए कि बात क्या है। बेचारे नवाब फकत आंखों से नीर बहाकर निसांस ढाल देते। कहते भी क्या, जिसके माशूक का पता ना हो उसके दिल का ठिकाना भी भला क्या पूछिए। नवाब साहब के हम प्याला हम नवाला थे एक मिर्जा साहब। ना माने, एक दिन कसम खाकर इस पर तुल गए कि या तो हम में शरीक होंगे वरना यहीं पर जान दे देंगे। वो दोस्त क्या जो दोस्त के काम ना आए। बहुत कहने सुनने पर नवाब साहब ने अपने दिल की बात कही और दोस्त के गले से लिपट कर रोते हुए बोले कि मिर्जा, भला इस पागलपन का भी कोई इलाज है? मगर मैं क्या करूं, ऐसी घड़ी का रोग लगा है कि जान लेकर ही जाएगा। मिर्जा बोले, आप ये शोक विरोग छोड़िए, जैसे रहते थे रहिए। मैं वादा करता हूँ, ताने चाहा तो महीने भर के अंदर ही जिसने आपको रुलाया है वही पहलू में हंसाने भी आएगा। मौलाना रुके, कहा पंडित जी चाय पीजिएगा? मैंने कहा किस्सा पूरा कीजिए मौलाना, अभी तो मेरी जान भी नवाब के साथ ही वादे की सूली पर टंगी हुई है। मौलाना मुस्कुराए, फिर बंधे ख्याल के नशे में उनकी आंखें लहरा उठी। मौलाना ने कहना शुरू किया, खैर जनाब मिर्जा साहब वादा करके तो चले आए, मगर ये समझ में ना आया कि आखिर इस गुत्थी को सुलझाए कैसे। उस दिन सैकड़ों डोले महलों में आए थे, कैसे पता चले कि उनमें लहरियों वाली कौन थी? शहर में जितने कहारों के अड्डे थे एक एक करके सब छान मारे, चारों तरफ कुटनियां छोड़ी, हर अमीर उम्रा की महरियों बांदियों को मिलाया, सब जतन करके हार गए। किसी तरह भी पता नहीं चला कि लहरियोंदार जरदोजी की ओढ़नी ओढ़कर कौन चोर महलों में घुसा था जो नवाब साहब का दिल ले आया। मिर्जा मायूस हो गए। वादे की मोहलत पूरी होने में बस दो ही एक दिन और बचे थे। यही सोच रहे थे कि अगर बात न निभा सका तो दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा। खुदा न करे कि नवाब ये सदमा बर्दाश्त न कर सके, उन्हें कुछ हो गया तो फिर मैं ही जीकर क्या करूंगा। जी में ठान लिया कि बस आज रात खुदकुशी कर लेंगे। दिन में घर का एक एक कोना हसरत भरी निगाहों से देखा, बेगम के साथ चौपड़ खेली, मीठी बातें की, घर के नौकरों चाकरों को बात बात पर बख्शीशें दी कि मरने के बाद याद करें। शाम को छत पर चढ़े कि बस अब आखिरी दिन है, दो घड़ी यहाँ बैठ ले, जाने कितनी चांदनी रातें वहाँ बेगम के साथ प्यार की बातों में गुजारी हैं। ऊपर पहुँचते ही मिर्जा की आंखें चमक उठी, कलेजा थक से रह गया। अपने और पड़ोसी के बीच की दीवार पर कुछ कपड़े फैले हुए देखे, उनमें जरदोजी की काम की हुई एक लहरियादार ओढ़नी भी थी। मिर्जा उल्टे पांव नीचे दौड़े, बेगम से पूछा, ऊपर कपड़े किसके सूख रहे हैं? मेरे, बेगम ने सादा सा जवाब दे दिया। मिर्जा का चेहरा मुर्दों की तरह सफेद हो गया, जी को कड़ा कर फिर पूछा, ईद के दिन महलों में क्या यही दुपट्टा उड़कर गई थी? हाँ, क्यों? बेगम की परेशानी बढ़ रही थी, मियाँ क्यों पूछ रहे हैं? मिर्जा साहब ने और भी जी को कड़ा कर पूछा, उस दिन कोई खास बात हुई थी? बेगम उलझन में पड़ी, फिर सोच कर कहा, और तो कुछ नहीं, मुझसे बेपर्दगी हो गई थी, दुपट्टा बाहर लटक रहा था, कोई शरीफ जादे बेचारे, बात पूरी भी ना हो पाई थी कि मिर्जा को गश आ गया। इतनी देर में बेगम पहेलियों के जाल में तड़प तड़प कर खुट गई। होश आने पर मिर्जा ने बेगम को सब हाल सुनाया, कहा, अब तुम मेरे किसी काम की ना रही, आज ही तलाक दूंगा और आज रात को ही तुम्हें नवाब साहब के महलों में जाना होगा। बेगम ने लाख सिर पटका, बहुत रोई, कहा, ये तुम मुझे किस कसूर की सजा दे रहे हो? ऐसा मैंने गुनाह क्या किया है? मिर्जा साहब का कलेजा फटने लगा, बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू पाया, बोले, दोस्ती का हक अदा कर रहा हूँ बेगम, तुम अगर जरा भी मुझे प्यार करती हो तो मेरी लाज निभाना। ये कहकर तीन बार तलाक तलाक कहा और नवाब साहब के यहाँ चल दिए। जाकर हंसते हुए बोले, भाई जान, मुंह मीठा कराइए, आपकी मुराद बराई। नवाब ने गले से लगा लिया। उसी रात डोले के साथ मिर्जा नवाब साहब के यहाँ गए। बेगम वही लहरियोदार ओढ़नी ओढ़ कर आई थी। डोला अंदर पहुंचा दिया गया। नवाब की पाछें खिली जा रही थी, बार बार पागल की तरह मिर्जा को गले लगा कर ये कहते कि तुम्हारे एहसान का बदला किसी कीमत से ना चुका सकूंगा। मिर्जा हंस कर बोले, ले अंदर जाकर अपना जी तो भर लीजिए, मैंने पहचानने में गलती तो नहीं की, फिर मैं इजाजत लूं और आप अपना दिलशाद फरमाए। नवाब साहब अंदर तशरीफ ले गए, ओढ़नी पहचानी, ओढ़नी वाली पर 100 जान से कुर्बान हुए। उनके तसव्वुर से कई लाख गुना ज्यादा वो हसीन थी, मगर उनके जानो ईमान की मलका फूलों की सेज पर बैठी आंसू बहा रही थी। बड़ी बड़ी कस्में दिलाने के बाद राज खुला। नवाब ज्यों के त्यों बैठे रह गए। दोस्त ने क्या कहकर दोस्ती का हक अदा किया है, एक वो है और एक। नवाब साहब बाहर चले आए। मिर्जा ने कहा, कहिए, पहचाना? हाँ मिर्जा, पहचाना। तुम भला गलती कर सकते हो? मगर मिर्जा, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर? और आपको क्या फरमाते हैं नवाब साहब? मिर्जा ने ताज्जुब के साथ कहा, सही अर्ज करता हूँ मिर्जा, मैं जब जब सेज की तरफ बढ़ता हूँ, अंधेरे में रोशनदान से एक हाथ निकल कर मुझे मना करता है, मैं डर कर कांप जाता हूँ मिर्जा। मुआफी बख्शे, मगर मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं आता नवाब साहब। मिर्जा सोच में पड़कर बोले, तुम खुद ऊपर जाकर देख लो। हाँ हाँ, बेखटके चले जाओ, भला तुमसे भी कोई पर्दा है? दोस्त से इजाजत पाकर मिर्जा अंदर तशरीफ ले गए। बेगम से पूछा, तुमने बेजा जिद तो नहीं की? तभी रोशनदान में से एक हाथ झलका, मिर्जा ने फौरन ही तलवार चला दी, हाथ कटकर अंदर गिर पड़ा। मिर्जा फौरन बाहर आए, मगर देखा कि नवाब साहब वहां तशरीफ नहीं रखते, शक हुआ। पीछे जाकर देखा तो उनके कटे हाथ से खून के धार बह रहे थे। ये क्या किया नवाब साहब? नवाब तकलीफ को जब्त कर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, इसी नापाक हाथ ने दोस्त की बीवी का पाक दामन छुआ था, यही सजा थी मिर्जा। मिर्जा देखते रह गए। कुछ देर के लिए हम दोनों ही चुप रहे। मौलाना ने एक ठंडी सांस ली, होठों पर दर्द की भीनी मुस्कुराहट आई और बोले, और क्या आपको ये भी बतलाना पड़ेगा कि ये कहानी बड़ी बी की आप बीती। ये बात तो खैर कहानी शुरू होते ही साफ हो गई थी। किस्सा बड़ा रंगीन और दिलचस्प है, दिल पर असर भी करता है, मगर यहाँ कोई खास अच्छा असर नहीं पड़ा मेरे दिल पर। सच कहूँ मौलाना, कहानी मुझे किसी आशिक मिजाज लखनवी की रंगीन कल्पना सी मालूम देती है। मौलाना तब तक स्टोव के पास पहुंच चुके थे, शायद उन्हें मेरी बात अखरी। मेरी ओर से मुंह घुमा कर बोले, मैं तो समझता हूँ कि इस कहानी में जबरदस्त मॉरल है पंडित जी। बात काटकर मैं तुरंत बोल उठा, यही ना कि दूसरों की बहू बेटियों के दुपट्टे पर आशिक होना चाहिए और दोस्ती का फर्ज अदा करने के लिए कुटने कुटनियों का जाल बिछाकर उन्हें भगा लाने की तरकीब करनी चाहिए। मौलाना अचकचाकर मेरी ओर देखने लगे। जाहिर था कि इस कहानी की बाबत उनकी बरसों की राय पर मेरी बातें कुल्हाड़ी चला रही थी और उससे उन्हें तकलीफ महसूस हो रही थी। मौलाना जब बहस में उलझते या नाराज होते तो वो नकसोरे फुलाकर तो एक सांस छटकार लेते थे। इस बार भी वैसा ही कर बोले, पंडित जी आप दूसरे ही नुक्ते नजर से देख रहे हैं। मेरी राय में दोस्ती की फर्ज अदायगी इस कहानी की जान है, इसका मॉरल है। साथ ही उस बेचारी बड़ी बी की दुख भरी कहानी भी कलेजा महसूस कर रख देती है। मुझे उस पर भी रहम नहीं आता मौलाना। वाजिद अली कल्चर में पलने वाले मिर्जा या नवाब को तो मैं नजरअंदाज भी कर सकता हूँ, मगर जिस शहर में बेगम हजरत महल ने औरतों की फौज बनाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए हों, बड़ी आफतों से मोर्चा लिया हो, उस शहर और उस जमाने की औरत इतनी लाचार हो कि। भाई पंडित जी, मियां दिल देखा करो यार। मौलाना स्टोव के पास से उठाए, उनके चेहरे से दीनता टपक पड़ती थी। वो मिर्जा नवाब और बड़ी बी की तरफ से दया की भीख मांग रहे थे। मेज के पास आकर खड़े होते हुए बोले, आप तो वकील की तरह बहस करने लग जाते हैं। अजी हर औरत हजरत महल या लक्ष्मीबाई नहीं बन सकती, उस तरह जैसे हर मर्द महात्मा नहीं बन सकता। इंसान को उसकी कमजोरियों के साथ प्यार करना चाहिए, कमजोरियां ना हो तो इंसान इंसान ना रहे। मौलाना का ये मर्म हर एक के लिए हमदर्दी से भरा हुआ दिल 100 बातों का एक जवाब बन जाया करता है। जी को यो परस जाता है कि चुप होते ही बनती है, मगर मेरे मन में बात उबल रही थी। फिर भी तैश को संवार कर ठंडे मन से मैंने जवाब दिया, मौलाना मैं भी कमजोरियों का कायल हूँ। भी अनजाने में बहुत सी कमजोरियां लात ली हैं, मगर जैसे जैसे समझ आती जाती है कमजोरियों से लगाव रखने की नीयत भी कम होती जाती है। मौलाना मुस्कुराए, कहा, अजी कहा, आप तो अभी भी अंधेरी रात में सांप की केचुल बटोरते फिरते हैं हजरत। आखिर है तो आप भी नवाब साहब के ही हम वतन, और जब तक आप ऐसे कर्म फरमाते रहेंगे बहुत सी शबनम और बड़ी भी जनाब की जूतियों के तुफैल से परविश पाती रहेंगी। अच्छा खैर होगा, आइए चाय बन गई। मौलाना ने मेरी कमजोरी पर छींटा मारकर मन के उबले हुए हक को अपनी जगह पर बिठा दिया। ये सही है, मगर इससे वो ठंडा नहीं हुआ, बात घूमती रही। रह रहकर इसी का मलाल होता है कि अपनी ही बुरी आदत से मैं मन की सच्चाई का मुंह बंद कर देता हूँ। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। चाय बनी, मेरा ध्यान उलझनों के समुद्र में गहरा डूब रहा था। मौलाना मुझे अनमना देखकर जल्द ही अपने कमरे में चले गए। मैं अपनी आदत पर गौर करता रहा। सचमुच मौलाना की मीठी मार ने मुझे आज बुरी तरह घायल कर दिया था। और ये भी सच है कि ये आदत अब महज एक आदत रह गई है। इसमें वो तड़प नहीं रही जो कभी आठों पहर आह वाह और हाय की मौजों में लहराती हुई आंखों में रंगीन ख्वाब के नशे को दुबला किया करती थी। अब असलियत समझ में आ गई है। फिर भी कभी काम काज से थक कर अक्ल के दड़बों में पलने वाले तरह तरह के ख्यालों से उब कर जी चाहता है कि अपने आप को मस्ती से भर लूं, थोड़ी देर के लिए बेफिक्र बन जाऊं, इतना खुददार हो जाऊं कि दुनिया की हर चीज मेरी परवाह करती नजर आए। पैसे फेंक कर यही खपत रंगीन मिजाजी की सूरत अख्तियार कर लेता है। ये आदत लखनऊ की ही देन है। जे खुश नसीबी कहूँ या बदनसीबी मानू कि मैंने अपने बचपन में उस लखनऊ की आखिरी उड़ती हुई सी झलक देखी है। वे ओढ़नियों पर आशिक होने वाले फनकार रहते थे, कनकौओं में नोट चिपका कर उड़ाए जाते थे। शाम को चौक के सकरे बाजार में चिकन के कुर्ते, टोपी, दुपट्टा, धोती, अंगरखा, चूड़ीदार पैजामा, पट्टेदार बाल और सुरमई आंखों का मेला लगता था। उनके साथ रेशमी रुमालों से ढके हुए मुट्ठियों से भीजते हुए हजरत बटेर भी तशरीफ लाया करते थे। मेहंदी से रची हुई दाढ़ी वाले मियाँ जी भी लंबा कुर्ता और ढीली मोहरी का पैजामा पहने, कंधे पर दुपट्टा डालकर पतली सी संदूचकी में इत्र, अंजन, मंजन और मिस्सी के अलावा नए फैशन के पाउडर, लेवेंडर और ओटो दिलबहार लिए कान पर हाथ लगाकर कोठे वालियों को पुकारा करते, ये माशुकाना। गोल दरवाजे के फाटक पर फूलों के गहने और गजरे लेकर माली अपने बेला, चमेली और मोतियों की वाहवाही में आप ही मगन रहते थे। रईसों के यहाँ शादी ब्याह के मौके पर दिनों और हफ्तों तक नाच गाने और भांडों की महफिलें हुआ करती थी। यहाँ साग सब्जी तक गा गा कर बेची जाती थी। गली सड़कों में हर वक्त बड़े बड़े तानसेन राग अलापते घूमा करते थे। जगह जगह मुशायरे होते थे और अक्सर होते थे। कहीं तीतर लड़ाए जाते थे, कहीं बटेर और बुलबुल। हर तरफ मस्ती और बेफिक्री का आलम था। लखनऊ उस वक्त भी अपनी पुरानी कहानियों से नई जिंदगी में रस पा रहा था। रात करवटों में ही बीती। सुबह 5 बजे टैक्सी वाले ने रोज की तरह आकर दस्तक दी। उन दिनों फिल्म की शूटिंग ना होने के सबब से रोज ही टैक्सी पर कोल्हापुर के आसपास के दृश्य देखने निकल जाता था। एक बार अलसाया मगर फिर चल पड़ा। सड़क और पहाड़ियाँ छीनी फुहारों के धुंधलके से भरी थी। ठंडी मज़ेदार हवा रात की कोरी आँखों की लोरियों से छू रही थी। टैक्सी की तेज रफ्तार की गूंज कानों में भरने लगी। सिर की झनझनाती नसों को आराम मिला, ठंडक पड़ी, झपकी आ गई। मोटर का हॉर्न बजा, मेरी नींद खुल गई। इतनी देर में ही बड़ा सुख मिल गया, मन में ताजगी आ गई। आँख खुलते ही मैं सीधा टिक कर बैठ गया। सामने एक पहाड़ी नाले पर बना हुआ एक छोटा सा पुल था। पुल की ऊंचाई तक बढ़े हुए पेड़ों के सघन कुंज के ऊंची सतह पर और नीचे घाटियों में खेत और छोर तक फैली हुई हरियाली, झोपड़ियों से निकलता हुआ धुआं फुहारों से टक्कर देकर ऊपर उठ रहा था। मोटर का हॉर्न फिर बजा। दो बैलगाड़ियां खड़खड़ करती छोटी सी सड़क को बड़े जोरों से घेरे चली आ रही थी। मोटर के हॉर्न ने उन्हें बताया कि अभी स्वराज नहीं हुआ। गाड़ीवान ने हड़बड़ा कर टिक टिक हिला हिला की घंटियां बड़ी मस्ती के साथ टुनटुना कर बैलों से झूमती झूमती हुई मेरे कानों के पास से गुजर गई और गाड़ियों के निकलते ही टैक्सी कोल्हापुर के पास से होकर बहने वाली पंचगंगा नदी के पुल पर आ गई। पंचगंगा को देखकर मुझे अपने यहाँ की गोमती की याद आई। मुझे बड़ी खुशी हुई। बरसात में नदी का बहाव तेज था। गोमती से लखनऊ और लखनऊ से रात की बात, याद की कड़ियाँ जुड़ी। दिमाग फिर मन की चिंता समेटने लगा। बुझी हुई चौकोर कंदील को हाथ में लिए हुए एक आदमी और उससे एकदम ही सट कर एक औरत चली जा रही थी। मुझे अपने बच्चों की याद आ गई। मैं मुड़कर उस जोड़े को देखने लगा। सड़क पर छाया हुआ बारिश का धुंधलका और पुल के नीचे से पंचगंगा का एक कोना झलक रहा था। इस बैकग्राउंड में उस जोड़े की सिलुएट सरीखी वो छवि मुझे बड़ी ही अच्छी लगी। मुझे अपनी पत्नी की याद आ गई। शर्म से आंखें यूं झेप गईं। जैसे वो मेरे पास ही बैठी हो। नजरें दूसरी तरफ देखने लगी। सड़क की बाई और दो पेड़ों का सहारा पाकर फैलती हुई अमरबेल को देखा। दोनों पेड़ों पर बुरी तरह छाकर वो बीच में झूले की पटरी की तरह लटक रही थी। इन दरख्तों के पीछे एक झोपड़ी, उसके सामने एक बैलगाड़ी रखी हुई, वही मुर्गे का एक जोड़ा पास पास चल रहा था। अपने गुनाह से बचने के लिए दिमाग उपन्यास और कहानियों की कल्पना में बहने लगा। मैंने राहत महसूस की और उसे पढ़ने दिया। कल्पनाएं और विचार मोटर की रफ्तार के साथ ही स्पीड पकड़ने लगे। खेत के किनारे एक दो ढाई साल का बच्चा नंग धड़ंग नाच रहा था। उसकी मस्ती ने रोम रोम में आनंद की लहरें उड़ा दी। तरह तरह की तस्वीरें तेजी से मन में छलकने लगी। सोचने लगा, किसी फिल्मी कहानी का हीरो पिकनिक पार्टी में ऐसी झीनी फुहारों से खुशनुमा मौसम में खड़ा होकर नाच रहा है। सब उसकी मस्ती पर हंस रहे हैं। हीरोइन भी हंस हंस कर रीछ रही है। फिर ख्याल आया, नहीं, ऐसी मस्ती का इस्तेमाल किसी ड्रामाई घटना के साथ हो। मान लो हीरोइन मर गई है, हीरो शमशान में नाच रहा है, या मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हो जैसे जैसे रोम जल रहा है और नीरो खड़ा बीन बजा रहा है। शहर के जलने का सीन बड़ा जबरदस्त बनेगा, पर नीरो बजाए बीन बजाने के अगर नाचे तो अच्छा होगा। कल्पनाएं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में होती हुई न जाने कहाँ की कहाँ पहुँच गई। हर तस्वीर सस्ती मन को थोड़ी देर के लिए लुभाती, फिर उससे जी उग जाता। मन नई तस्वीर खोजता। तस्वीरों में से पात्र की मस्ती और बेफिक्रापन गायब हो गया। सिर्फ नृत्य का ही भाव रहा। नृत्य भी हो सकता है। मन में दक्षिणी स्वर और ऑर्केस्ट्रा का गूंज उठा। फिर सोचा, नहीं, नटराज के बजाय कथक नाच हो, बड़ी महफिल में हो। अकेले हीरो ही बैठा है, मैं बैठा हूँ लखनऊ में, सिकंदर नाच रही है। गेहुए रंग की बड़ी बड़ी आंखों वाली कमानीदार भावे, पतले होठ, लंबी नुकीली नाक, पतली कमर जैसी वाकई कम देखने में आती है। बड़ी सुडौल जिस्म वाली, मैं उसे सर सिकंदर कहकर पुकारता था, मगर शरीर से वो जितनी ही सुंदर थी, दिमाग उतना ही कुंद। नाच अच्छा जानती थी, पर उसमें जान नहीं डाल पाती थी। उसके मुकाबले में बड़े मुनीर नाम ध्यान में आते ही रस आ गया। गोल चेहरा, चेचक होते हुए भी हसीन लगती थी। छोटे छोटे कत्थे से रंगे दांत, आगे दो दांतों में सोने की कीलें चमकती थी। थोड़ी पर देहाती किस्म का फूल गुदा हुआ, गांठ लठीली सी, लंबी चोटी वाली, उसमें अदब की रंगीनियत थी। गालिब पर जी जान से फिदा, उफ, कैसी बुरी मौत पाई बेचारी ने। सिफिलिस से सारा बदन सड़ गया था, होंठ और नाक का हिस्सा तक जल गया था। हे भगवान, पुरानी याद से रोम रोम सिहर उठा। मन बेहद गिर गया, गहरा डूब गया। फिर झुंझलाहट पैदा हुई, कहां से कहां सोच गया, सारी मस्ती गायब हो गई। वो रस जो खेल में नाचते हुए बच्चे से पाया था, अब पीरा होकर जहर बन गया। मैं थक गया, बेदम हो गया। फिर बड़े मुनीर की आखिरी हालत की तस्वीर के साथ मौलाना की बात याद आई, जब तक आप मेरे कर्म फरमा रहे हैं, मगर ये कौन सा कर्म है जो मैं या मेरे ही जैसे खुदगर्ज रंगीन मिजाज समाज के ऊपर करते हैं। ये कौन सा ऐसा रस है जिसके पीछे एक शहर के कल्चर की सारी शक्तियां लगा दी जाती हैं। कुटनिया, गुंडे, शोहदे, दलाल, मेरे और मेरे ही जैसे लोगों के रस की परवरिश करने के लिए न जाने कहां कहां से औरतों लड़कियों को भगा कर लाते हैं, उनके ऊपर बला के जोर जुल्म करते हैं, दिन भर मजदूरी की तरह उनसे काम काज करवाते हैं, हमें रिझाने की तालीम देते हैं, और रात में कभी कभी तो एक रात 11-11 आदमी। बड़े मुरीर का ऐसा ही हाल हुआ। जब बीमार पड़ी तो उनके तन की कमाई खाने वाला राक्षस दल उसे छोड़कर चला गया। मैं महसूस करने लगा कि इस पेशे को बढ़ावा देने वाला मैं भी जाने अनजाने तौर पर उसकी दर्दनाक मौत का जिम्मेवार हूँ। ओढ़नी पर आशिक होने वाला लखनऊ बड़े मुनीर का हत्यारा है। इस नज़र से अपनी बुराई पहले कभी नहीं देखी थी। अपनी ही नज़रों में मैं मामूली गुनाहगार नहीं बल्कि हत्यारा बन गया। मेरा सारा पढ़ना लिखना सोचना, मेरा आदर्श फलसफा सब बेकार था। मैं झूठा साबित हुआ। बरसों बाद मेरा संग दिल पिघल कर पानी पानी हो गया। गाड़ी गैबी पीर घाट पर पहुंच चुकी थी। मोटर से उतरकर ऊंची पहाड़ियों के साए में मैं खड़ा हो गया। कुदरत की हर शय मुझ पर फटकार बतला रही थी। पीर की मजार पर मैंने रो रो कर कसम खाई, अब नहीं, अब नहीं।
कहानी थोड़ी सी मुश्किल थी, पर इस कहानी के माध्यम से लेखक समाज में चली आ रही उस समस्या के बारे में हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जहां लड़कियों को जिस्म फरोशी का धंधा करने के लिए मजबूर किया जाता है और उनकी इस हालत के लिए वो खुद को और अपने जैसे लोगों को जिम्मेदार मानता है।
आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी के साथ फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।